एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने सिर्फ अतीत को दर्ज नहीं किया बल्कि भविष्य के लिए इतिहास लिखने का नजरिया ही बदल दिया। यह है सीमा कियान की महान रचना शिजी, यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन।
बिल्कुल, और ये कोई ऐसी मतलब धूल भरी पुरानी पोथी नहीं है। आप सोचिए, 2000 साल पहले लिखी गई बातें, नेतृत्व कैसा हो, इंसान का स्वभाव क्या है, सत्ता कैसे काम करती है, सफलता और असफलता क्यों मिलती है, ये सवाल तो आज भी उतने ही ताजा हैं, है ना। शिजी हमें सिखाती है कि अतीत की कहानियों में आज के पैटर्न कैसे देखें एक तरह से।
हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिजी आखिर है क्या, इसे लिखने वाले सिमा कियान कौन थे, उनकी अपनी कहानी में ऐसा क्या खास था, और इस किताब के कौन से कह सकते हैं हीरे मोती आज भी हमारी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखक से, सिमा कियान। देखिए, ये कोई आम दरबारी इतिहासकार नहीं थे। लगभग 145 ईसा पूर्व जन्मे सिमा कियान चीन के हान राजवंश में सम्राट वू के समय के ग्रैंड हिस्टोरियन या ताइशी निन थे। और ये पद, दिलचस्प बात है, उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता सिमा तान खुद एक बड़े विद्वान थे और उन्होंने ही चीन का एक मुकम्मल इतिहास लिखने का ये विशाल सपना देखा था।
और सिमा कियान इस सपने को पूरा करने के लिए शायद सबसे सही इंसान थे। सोचिए जरा, शाही अभिलेख खगार, सरकारी दस्तावेज, गुप्त रिपोर्टें, मतलब सब तक उनकी पहुंच थी।
हाँ, ये तो था।
लेकिन वो सिर्फ किताबों में ही गुम नहीं हुए, उन्होंने पूरे चीन का सफर किया, पुरानी जगहों पर गए, लोगों से मिले, उनकी कहानियां सुनी, जैसे कोई खोजी पत्रकार हो।
सही कहा।
ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी उनके लिए, ये उनके पिता की विरासत थी, एक जुनून था, एक मिशन।
और इसी जुनून की राह में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिमा कियान और उनके लेखन दोनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने दरबार में एक सेनापति थे, ली लिंग, उनका पक्ष लिया जो सम्राट की नजर में गिर चुके थे, और सजा मिली मौत या बधियाकरण,
कास्ट्रेशन।
बाप रे।
सिमा कियान ने दूसरा विकल्प चुना, जिसे उस समय सबसे बड़ा अपमान माना जाता था, रेशम के कीड़े के कमरे की सजा कहते थे उसे।
पर क्यों, मतलब इतना बड़ा अपमान? हाँ, सवाल यही है, क्यों? ताकि वो जिंदा रह के अपने पिता का सपना पूरा कर सकें, वो इतिहास लिख सकें। इस भयानक अनुभव ने, आप कह सकते हैं, उनकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। वो सत्ता के खेल को ज्यादा बारीकी से, ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखने लगे। अन्याय सहने वालों के लिए उनके दिल में गहरी हमदर्दी पैदा हुई। उन्हें लगा कि ये किताब ही उनका असली जवाब होगी, उस अपमान से कहीं ज्यादा स्थायी। ये सिर्फ इतिहास लिखना नहीं था, ये अपने जमीर की आवाज को बचाए रखना था। कमाल का नैतिक साहस था उनमें।
वाकई, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब आते हैं उस महान कृति पर जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ सहा। शिजी, आखिर ये है क्या, आसान शब्दों में अगर कहें तो?
हाँ, आसान शब्दों में ये चीनी इतिहास लेखन की नींव है। समझिए, एक तरह की बाइबल है हिस्टोरियंस के लिए। वहां एक विशाल ग्रंथ जो चीन के पौराणिक अतीत, यानी पीले सम्राट के जमाने से देकर सिमा कियान के अपने दौर तक, सम्राट वू का शासनकाल, करीब 2500 साल का इतिहास समेटता है।
2500 साल?
जी, और उनका मकसद बहुत बड़ा था। उन्होंने खुद लिखा, स्वर्ग और मनुष्य से जुड़े हर पहलू की जांच करना, अतीत से वर्तमान तक के बदलावों को समझना और इसे एक पारिवारिक मिशन के तौर पर पूरा करना।
अच्छा,
मतलब वो सिर्फ राजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं बनाना चाहते थे।
बिल्कुल नहीं,
वो पूरी सभ्यता की नब्ज पकड़ना चाहते थे, उसका समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रीति रिवाज, सब कुछ। वो जानना चाहते थे कि इतिहास के उतार चढ़ाव के पीछे कौन से गहरे नियम काम करते हैं।
और जिस तरह से उन्होंने ये किया वो भी कमाल का था। मुझे ये स्ट्रक्चर बहुत दिलचस्प लगा। ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, उन्होंने इतिहास को 5 अलग अलग लेंस से दिखाया।
हाँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कह सकते हैं।
बिल्कुल, एक बहुआयामी तस्वीर बनाने के लिए। पहला, बेसिक एनल्स, मूल वृत्तांत। ये समझिए इतिहास की रीढ़ है, राजाओं और राजवंशों की कहानी।
बिल्कुल, क्रोनोलॉजी।
दूसरा, टेबल्स, तालिकाएं, ये वंशावली और टाइमलाइन के नक्शे हैं जो दिखाते हैं कौन कब कहां किससे जुड़ा था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाने के लिए।
हाँ, खासकर जब चीन बटा हुआ था तब ये बहुत जरूरी था।
तीसरा ट्रीटीज, ये समाज के मशीनरी पर फोकस करते हैं, रीति रिवाज, संगीत, कानून, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि नदियों और नहरों पर भी। ये मुझे बहुत यूनिक लगा।
हाँ, ये बहुत आगे की सोच थी उस वक्त के हिसाब से।
चौथा, हेरिडिट्री हाउसेस, वंशानुगत घराने, ये राज्यों और ताकतवर कुलीन परिवारों का इतिहास है,
जो अक्सर सेंटर से ज्यादा पावरफुल होते थे।
और पांचवा, एरिड बायोग्राफीज, ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है जिसमें हर तरह के लोगों की जीवन कहानियां हैं।
सही कहा, इस अनोखे ढांचे से गुजरते हुए कई बड़े सवाल सामने आते हैं। राजवंश क्यों उठते और गिरते हैं? समाज को कौन सी चीजें जोड़ती या तोड़ती हैं? सत्ता का असली चेहरा क्या है? आर्थिक नीतियां कैसे इतिहास बदलती हैं? और सबसे बढ़कर इंसान क्या चीज है? उसकी महत्वाकांक्षा, वफादारी, धोखा, हिम्मत, ये सब शीजी के पन्नों में जिंदा हो उठते हैं।
चलिए अब इन पांच हिस्सों पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं, लेकिन संक्षेप में। पहला भाग, बेसिक एनल्स, बेंजी, ये आधिकारिक इतिहास है, शासकों की कहानी।
हाँ, जो मेन नैरेटिव होता है।
यही हमें स्वर्ग का आदेश या मैंडेट ऑफ हेवन का सिद्धांत दिखता है कि नेक राजा राज करते हैं और जालिम सत्ता खो देते हैं।
बिल्कुल, जैसे किनशी हुआंग का उदाहरण है, एकीकरण किया लेकिन फिर अत्याचार।
हाँ, और फिर पतन, और उसके बाद ल्यू बैंग आई, हान वंश के संस्थापक, जो ज्यादा प्रैक्टिकल थे।
तो ये तो हुई राजाओं और राज्यों की मुख्य कहानी, लेकिन जैसा आपने कहा, सीमा क्यान यही नहीं रुके। दूसरा भाग है टेबल्स, बेयाओ, ये सिर्फ नाम और तारीखों की लिस्ट नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये दिखाते हैं कि अलग अलग राज्य और परिवार कैसे एक दूसरे से जुड़े थे, खासकर खंडित दौर में। ये इतिहास की बड़ी तस्वीर देखने में मदद करते हैं, जैसे आज हम डेटा विजुअलाइजेशन से पैटर्न देखते हैं।
बिल्कुल। फिर आता है तीसरा और मेरे ख्याल से बहुत अनोखा हिस्सा, ट्रीटीज।
हाँ, ये मेरा भी पसंदीदा हिस्सा है।
यहाँ सिमा कियान एक समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री बन जाते हैं। वो रीति रिवाज, संगीत, कानून, कैलेंडर और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर लिखते हैं।
मिसाल के तौर पर आर्थिक ग्रंथ में वो खेती, मुद्रा, नमक और लोहे पर सरकारी नियंत्रण जैसी बातों पर चर्चा करते हैं। उनका मानना था कि आर्थिक स्थिरता ही राजनीतिक ताकत की जड़ है।
कमाल है, ये उनके जमाने के लिए बहुत आगे की सोच थी।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों और सियासत से नहीं बनता, समाज की बुनियाद कैसे काम करती है ये समझना जरूरी है। चौथा भाग है हेरिडिटरी हाउसेज, शीजिया।
हाँ,
ये उन शक्तिशाली सामंती राज्यों और परिवारों की कहानी है जो अक्सर शाही दरबार से ज्यादा ताकतवर होते थे।
हाँ,
और दिलचस्प बात यह है कि इसमें उन्होंने कन्फ्यूशियस की जीवनी भी शामिल की।
अच्छा, ये क्यों?
ये दिखाता है कि सीमा खयान विचारों की ताकत को, मतलब इंटेलेक्चुअल और मॉरल पावर को, राजनीतिक ताकत के बराबर मानते थे।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है
जी।
और फिर आता है पांचवा और सबसे बड़ा हिस्सा, एरेड बायोग्राफीज, लीजवान। इसमें 70 खंड हैं।
हाँ, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में है।
ये असल में शिजी का दिल है,
है ना,
कह सकते हैं।
इसमें शासकों को छोड़कर समाज के हर तबके के 130 से ज्यादा लोगों की जीवनियां हैं। सेनापति, विद्वान, व्यापारी, कवि, हत्यारे, विद्रोही, यहाँ तक कि दरबारी मजाक करने वाले भी।
सच में?
हाँ, ये कहानियां इतिहास को जिंदा कर देती हैं।
यहीं पर हमें इंसानी ड्रामा अपने पूरे उफान पर दिखता है।
बिल्कुल, जैसे प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी जनरल जांग यू, जो सब कुछ जीतकर भी हार गया।
हाँ, उसकी कहानी तो बहुत दुखद है।
या महान रणनीतिकार हान शिन, जिसकी काबिलियत ही उसकी मौत का कारण बनी, उसे शक की वजह से मार दिया गया।
उफ।
या फिर हत्यारा जिंग के, जिसने सम्राट को मारने की नाकाम कोशिश की। ये जीवनियां हमें सिखाती हैं कि इतिहास बड़े बड़े सिद्धांतों का नहीं, बल्कि इंसानों के फैसलों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनकी कमजोरियों का नतीजा है। ये इतिहास को मानवीय बनाता है।
तो इन सब कहानियों और विश्लेषणों से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं? आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में एक सबसे अहम संदेश तो वही स्वर्ग का आदेश या मैंडेट ऑफ हेवन वाला है, कि सत्ता की वैधता नैतिकता से जुड़ी है। जो शासक जनता का भला करता है, कायदे से चलता है, वही टिकता है। भ्रष्टाचार और जुल्म पतन लाते हैं। ये कुछ कुछ हमारे यहाँ के राजधर्म जैसा ही है।
हाँ, बिल्कुल, राजा का भी एक धर्म, एक कर्तव्य होता है।
जी
हाँ, लेकिन क्या यह हमेशा इतना सीधा होता है? शिजी में इंसान की अपनी भूमिका, एजेंसी और किस्मत, फेट के बीच की कश्मकश भी दिखती है ना?
बिल्कुल दिखती है। कई काबिल लोग नाकाम हो जाते हैं, कई बुरे लोग कामयाब।
सिमा क्यान खुद स्वर्ग के न्याय पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, वो कोटेशन बहुत पावरफुल है।
लेकिन वो किस्मत के आगे घुटने टेकने को नहीं कहते, वो उन लोगों की तारीफ करते हैं जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। शायद संदेश ये है कि नतीजा चाहे जो हो, सही कर्म करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपकी नीयत क्या है?
बिल्कुल, और यही इतिहासकार की भूमिका भी सामने आती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
सीमा क्यान सिर्फ घटनाओं को दर्ज नहीं करते, वो अक्सर अपनी टिप्पणी जोड़ते हैं, ग्रैंड हिस्टोरियन कहते हैं।
जी, उनका एक सिग्नेचर स्टाइल था ये।
वो नैतिक फैसले सुनाते हैं। उनका मानना था कि इतिहासकार का काम सिर्फ क्या हुआ बताना नहीं, बल्कि क्यों हुआ और क्या ये सही था पूछना भी है।
बिल्कुल, एक तरह से जजमेंट भी देना है। आज के फेक न्यूज के जमाने में ये बात कितनी जरूरी लगती है, सच बोलना और नैतिक जिम्मेदारी लेना।
सही बात है। और एक और बात जो आपको भी जरूरी लगी थी।
हाँ, आर्थिक और सामाजिक ताकतों का महत्व। शिजी के ट्रीटीज वाले हिस्से दिखाते हैं कि सिमा क्यान समझते थे कि अर्थव्यवस्था, खेती, व्यापार, ये सब समाज और सियासत की बुनियाद है।
हाँ, ये सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं है।
बिल्कुल, ये आम लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी की कहानी भी है। आज भी देखें तो आर्थिक मुद्दे ही तो अक्सर सरकारों का भविष्य तय करते हैं।
और आखिर में एक और जरूरी सबक, बेगाम सत्ता के खतरों की चेतावनी। सिमा क्यान खुद सम्राट वू के दौर में जी रहे थे, जो बहुत शक्तिशाली लेकिन निरंकुश भी थे। किन्शी हुआंग का हश्र एक सबक की तरह है उनके लेखन में। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत को हमेशा संतुलन और जवाबदेही की जरूरत होती है, वरना वह जुल्म बन जाती है।
वाकई शिजी में ऐसे कई विचार हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए कुछ यादगार विचारों या उनके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करते हैं। कोट्स तो नहीं कहेंगे, पर जो एसेंस है।
हाँ, जैसे उनके पिता ने मरते समय उनसे कहा था, हमारे पूर्वज ग्रैंड हिस्टोरियन थे, तुम्हें हमारा काम जारी रखना चाहिए। इसमें कर्तव्य की भावना है, एक विरासत को संभालने का जज्बा है, एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, और फिर वो अपमान सहने का फैसला। उनका कहना था, इंसान एक ही बार मरता है, मौत माउंट ताई जितनी भारी भी हो सकती है या हंस के पंख जितनी हल्की भी।
क्या लाइन है।
सबसे बड़ा अपमान बधियाकरण है, लेकिन मैं अपना काम पूरा करने से पहले मरने को तैयार नहीं था। ये दिखाता है कि अगर मकसद बड़ा हो तो इंसान कितना कुछ सह सकता है, कैसे दर्द को ताकत में बदल सकता है, रिजिलियंस।
सही कहा। और अपने काम करने के तरीके पर वो कहते हैं, मैंने दुनिया की पुरानी रिवायतें जमा की हैं, अतीत के कामों और घटनाओं की जांच की है और उनकी कामयाबी और नाकामी के पीछे के उसूलों को परखा है।
मतलब गहरा विश्लेषण,
ताकि अतीत और वर्तमान के बदलावों को समझ सकूं और अपना फैसला दे सकूं। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, ये विश्लेषण है, पैटर्न ढूंढना है और नतीजा निकालना है, जजमेंट पास करना है।
और वो तीखा सवाल जो वो उठाते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग का रास्ता इंसाफ का है, फिर भी बोई और शूकी जैसे नेक लोग भूखे मर गए, जबकि डाकू झी जुल्म करते हुए बुढ़ापे तक जिया।
हाँ,
अगर यही स्वर्ग का रास्ता है तो क्या ये सही है या गलत?
ये सवाल आज भी गूंजता है क्या? दुनिया में हमेशा न्यार होता है?
मुश्किल सवाल है।
अच्छाई का फल हमेशा मिलता है?
ये इतिहास की नैतिक जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है।
और ये सारे विचार सिर्फ किताबी नहीं है, इन्हें हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल।
जैसे
मिसाल के तौर पर लीडरशिप। जियांग यू बहुत काबिल थे पर अकेले चलते थे, एरोगेंट थे। ल्यू बैंग शायद उतने काबिल नहीं थे, पर वो लोगों को जोड़ना जानते थे, टीम प्लेयर थे। नतीजा, ल्यू बैंग जीते।
आज भी किसी टीम या कंपनी में देखें तो सिर्फ अकेले टैलेंटेड होने से बात नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना जरूरी है।
सही कहा। और सत्ता के समीकरणों को समझने में भी मदद मिलती है, जैसे वो हानशिन की कहानी।
हाँ, वो बड़ा ट्रेजिक है।
उनकी जबरदस्त काबिलियत ही उनके सम्राट के लिए खतरा बन गई। ये हमें सिखाता है कि ऑफिस हो या समाज, सिर्फ अपना काम अच्छा करना काफी नहीं होता, ये भी समझना पड़ता है कि आपकी तरक्की से दूसरों को कैसा महसूस हो रहा है।
हाँ, इनसिक्योरिटीज
और अपनी बात कैसे रखनी है, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। सिमा क्यान की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने भयानक अपमान और दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, अपना मैग्नम ओपस क्रिएट किया। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में जब मुश्किलें आएं तो हम हार मानने के बजाय उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं।
साथ ही पूरी तस्वीर देखने की सोच, होलिस्टिक व्यू जिसे कहते हैं।
जी,
किन राजवंशों ने जंग तो जीत ली पर समाज को संभाल नहीं पाए और बिखर गए। शिजी के प्रीटीज हमें सिखाते हैं कि किसी भी काम में, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर का बजट, सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि उसके आर्थिक, सामाजिक, दूरगामी असर सब पर सोचना जरूरी है। बिग पिक्चर थिंकिंग।
सही कहा। और शायद सबसे जरूरी, इंसानों को समझने की कला, एम्पथी।
हाँ,
जब हम शुजी के अलग अलग किरदारों की कहानियां पढ़ते हैं, उनकी अच्छाइयां, बुराइयां, मजबूरियां, तो हम इंसानी स्वभाव की गहराई को बेहतर समझ पाते हैं।
बिल्कुल।
दूसरों के नजरिए को समझना हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों में या काम की जगह पर।
तो मेरे लिए इस पूरी बातचीत का सार ये है कि इतिहास आखिर में इंसानों की कहानी है, उनके फैसलों, उनकी कमजोरियों, उनकी अच्छाइयों की। और शायद असली लीडरशिप सिर्फ ताकत या हुनर में नहीं बल्कि थोड़ी विनम्रता और लोगों को साथ लेकर चलने में है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता के बिना ताकत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अल्टीमेटली मोरालिटी मैटर करती है, और अगर आपके पास कोई मकसद है, कोई पैशन है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि एक स्थायी विरासत बनाने का जरिया बन सकती है। सीमा कियान ने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने इतिहास को देखने, समझने और उससे सीखने का एक नया तरीका दिया। एक पैराडाइम शिफ्ट था वो।
बिल्कुल। शिजी सिर्फ चीन का अतीत नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम सब आज भी इंसान की फितरत, उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसकी नादानियों और उसकी महानता की झलक देख सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।